السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی نہیں بات نہیں ابھی بنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اب لگ رہا ہے کہ آپ ناشتہ کر کے آئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے لا تحزنی ڈونٹ بی سیڈ. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زخم پہ زخم سہے پھر بھی دھڑکتا جائے دل درویش, تو کس دیس کا باشندہ ہے. رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ مانا کہ زندگی میں غم بہت ہیں, یہ مانا کہ زندگی میں غم بہت ہیں, ہنسے بھی زندگی میں ہم بہت ہیں. پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی. آپ اپنے فون کو نا وائبریشن پہ کر لیں پلیز. پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی, بڑی مدت ہوئی اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا, اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا, کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا. تو میری اور آپ کی زندگی جو ہے, اگر میں اور آپ غور کرتے ہیں تو آج ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کہ پریشان ہے, اداس ہے, غمزدہ ہے, ڈپریشن میں ہے, یا خدا نخواستہ اچانک کوئی بیماری جو ہے اس نے آ کر بسیرا کر لیا ہے, یا بہت دن گزر گئے شادی کو اور دعا مانگ رہے ہیں اور اولاد نہیں ہے, یا یہ اولاد تو ہے لیکن اولاد میرے دل کا سکون بننے کی بجائے میرے آنکھوں کے آنسو بن گئی ہے, یا یہ کہ وہ شادی جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا کہ بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں, بیٹے کا گھر بسا دوں, لیکن یہ کہ شادی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد بیٹا خوش نہیں ہے, اس کے بعد بیٹی جو ہے وہ بہت دکھی ہے, وہ بہت پریشان ہے, اور میرے دکھ ایسے ہیں کسی سے کہہ نہیں سکتی لیکن ان کو سہ بھی نہیں سکتی. میں کیا کروں؟ بہت دنوں سے یہ دل چاہ رہا تھا کہ بس چھوٹی عمر میں بس بیٹی کی شادی کر دوں, اور پریشان تھی. 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال کی عمر میں شادی کر دی, اور پھر چند ہی دنوں بعد یا 1-2-3 سال کے بعد بیٹی پھر گھر میں آ گئی. ماں رو رہی تھی کہ مجھے فکر تھی کہ جلدی سے اس کے گھر کا کروں, مجھے میں نے تو اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے نہیں دی, لیکن بیٹی جو تھی وہ گھر آ گئی. تو کہیں طلاق ہے, اور شادیوں کے ساتھ ساتھ طلاق کا ریشو جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور کہیں اپنے بہت پیارے جن کے لیے دعائیں مانگی تھیں, جن کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے, جن کا انتظار کرتے تھے کہ کب آئیں گے, کب پاس ہوں گے, کب گریجویٹ ہوں گے, لیکن کیا ہوا کہ پھر اچانک کوئی ایسی آزمائش آئی کہ وہ میرے پیارے ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے. ایک بہن رو رہی تھی کہ بیٹا میرا بھائی جو ہے وہ سائنٹسٹ جس نے ڈسکور کیا کہ پٹرول کی بو سے جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے, اور وہ خود کینسر کا مریض بنا, 6 ماہ کے اندر ڈیتھ ہو گئی. اور کہنے لگی کہ میرا بھائی اس کے ساتھ مرحوم میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ میرے پاس سے چلا گیا ہے. ایک ماں کہنے لگی کہ بیٹی ابھی ہائی اسکول میں گئی تھی اور میں اوپر تھی, باپ چاکلیٹ لے کر آیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹی جو ہے دیکھا تو وہ اس کو کچھ ہوا, ہارٹ اٹیک یا کیا, کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ماں کہنے لگی بیٹی کی شادی کی تیاری کرنے گئی تھی और पीछे बेटे जो थे, दो बेटे, जवान बेटे 21 साल के 22 साल के, वो पानी में डूबकर मर गए। और हम, मैं और आप जो है, बहुत प्लानिंग करते हैं कि खुशियां मनानी है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ज़िंदगी में ऐसे आजमाइश, मसाइल, तकलीफ़ों से गुजरते हैं कि फिर उसके बाद जो है बाज़ औक़ात जब हम उसको जो आजमाइश आती है उसको सही तरह से टैकल नहीं कर पाते, उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर मैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तन्हा हो जाते हैं, कुछ का अल्लाह पर ईमान ही शेक हो जाता है। मेरे अपने जवान बेटे की कुछ दिन पहले ही, मुझे ऐसे लगता है कि बस बहुत अभी जैसे बस ऐसे लगता है डेथ हुई, हालांकि एक साल अभी हुआ है, 7 फरवरी को एक साल हुआ। और जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो उस वक्त मुझे एक औरत का फ़ोन आया, उसने कहा कि हमारे इधर पड़ोस में, यानी जिसका फ़ोन आया वो डॉक्टर थी, मैं उनको नहीं जानती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी डॉक्टर है, उसके मियाँ भी डॉक्टर थे, एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद उनका अल्लाह पर ईमान ही जो है ना वो शेक हो गया है। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया, अल्लाह ने हमारे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो सदमे हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये क्यों आती हैं? गम हुजन जो है, इसको हुजन हजन जो हम पढ़ते हैं, ये किसे कहते हैं, ये क्यों आते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इस पे हमारा रवैया क्या होना चाहिए, और ये जो आजमाइशें हैं या जो गम हैं, जो परेशानियां हैं, इनको मैं और आप कैसे हैंडल करें, मैं और आप क्या करें, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं और आप दिन रात आपस में ये बात सुनते रहते हैं या करते रहते हैं कि वालदा बहुत बीमार हैं और बेड पर हैं, उठ भी नहीं सकती, पैंपर भी लगाना पड़ता है। दर्स ख़त्म हुआ, एक औरत आकर कहने लगी एक कि मेरी इसी विलेज में, यानी इसी सिटी में, इसी काउंटी में हम 3 बहनें रहती हैं, मैं ही अपनी माँ को संभालती हूँ, दूसरी 2 कभी आती ही नहीं हैं, मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं माँ की खिदमत तो कर सकती हूँ लेकिन माँ उनको याद करती है, उनका इंतज़ार करती है, मैं कैसे क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो वो यानी माँ के गम को कैसे धोए या माँ की ज़रूरत को कैसे पूरा करे, कि दोनों दूसरी बच्चियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना रोल प्ले करे। इसी तरह वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना या बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त से पेश आना। जैसे कोई कहता है कि शौहर बहुत सख्त मिजाज है, औरत कहती है कि मेरा मियाँ मारता है, औरत कहती है कि वो शराब पीता है, माँ कहती है कि मेरी बेटी शराब पीती है, माँ कहती है कि मेरे बेटे ड्रग्स में हैं, मुझसे ज़्यादा दुखी कोई हो नहीं सकता, आप कोई दुआ बताएं, आप इसका इलाज बताएं, आप इसका तरीक़ा बताएं। और फिर क्या होता है, जब शौहर छोड़ देता है, बीवी छोड़ देती है और तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है, या बच्चों के मसाइल को हैंडल नहीं कर पाते, हम उनको हल नहीं कर पाते, जब हम मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता तो हम फिर सुसाइड कर लेते हैं। कॉल आई कि बच्ची ने नियाग्रा फॉल में जंप करके जो है वो खुदकुशी कर ली। घर वाले उदास, तकलीफ में, छोटा सा बेटा, चंद महीने का, वो छोड़कर दुनिया से बच्ची चली गई। शौहर अभी ऑस्ट्रेलिया में थी, बहन रो रो के उसका बुरा हाल कि भाई ने खुदकुशी कर ली कि बीवी ने छोड़ दिया है, बच्चे हैं, और वो याद करता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसकी जुदाई को। जो भी उसकी गलतियां होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत करे, आसानी करे और उसके बच्चों को उसके लिए सदका जारिया बनाए। तो वो उसको जो है वो क्या किया उसने कि वो उसको सही से हैंडल ना कर सका, टैकल ना कर सका। तो मेरी प्यारी बहनों, मुझे और आपको यानी ये समझना है कि ये आजमाइशें, ये तकलीफ़ें, ये बीमारियाँ, ये दुख, ये भूख, ये प्यास, ये खून, ये क़ता रहमी, ये मसाइल और जो परेशानियाँ आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में हैं, ये क्यों हैं, इनको कैसे हैंडल करें, इनको कैसे टैकल करें। तो आइए इसके लिए हम कुरान की तरफ जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो ज़िंदगी है ना, इसका हुस्न क्या है, दिन में सूरज होता है और रात में क्या होता है, चांद होता है। सूरज की रोशनी में एक गर्मी है, रोशनी रात को भी चांद की है लेकिन उसमें एक ठंडक है, दिन जो है उसमें उजाला है, उसमें सफ़ेदी है, लेकिन रात जो है बहुत अंधेरी है, बहुत तारीख है, लेकिन हर रोज मैं और आप देखते हैं कि सूरज के बाद चांद जरूर आता है, दिन के बाद रात जरूर आती है। मौसम बदलते हैं, हमेशा गर्मी नहीं रहती, गर्मी के बाद फिर सर्दी, फिर बरसात, फिर बहार, तो मौसम चेंज होते हैं। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, इसी तरह कभी कोई अमीर होता है तो कोई गरीब भी हो जाता है, जो गरीब होता है वो अमीर हो जाता है, जिसके पास सेहत है वो हमेशा नहीं उसके पास रह सकती, फिर वो बीमार भी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। तो दुख और सुख, खुशियां और गम, खुशियां और गम, सुबह और शाम, ये जो अल्लाह ने एक तवाजुन रखा है, ये अल्लाह ने जो एक तसलसल रखा है, ये इस पूरे कायनात का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ये कहते हैं, पूरे कायनात के निज़ाम पे गौर करो कि कोई भी चीज़ एक हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तो पहली चीज़ जो मैंने और आपने इस कायनात पर गौर करने से सीखी वो क्या, कि जहाँ जिंदगी है वहाँ मौत ज़रूर है। जब पैगम्बरों को भी मौत आई तो फिर मैं और आप किस खेत की गाजर और मूली हैं? फिर मौत से कैसा डरना, है ना? अब मौत से कैसा डरना, फिर करना क्या है? मौत की तैयारी करनी है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो करना क्या है, मौत से डरने की बजाय अल्लाह के पास जाने की तैयारी करनी चाहिए। यौमा यकूमुन नास लि रब्बिल आलमीन, क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी, कोर्ट लगेगी, द बिग कोर्ट डे। बहुत अहम है कि मैं और आप उससे डरें और उसके लिए तैयारी करें। तो पहली चीज जो समझने की है कि जंगल की धूप छांव ही जंगल का हुस्न है, जंगल की धूप छांव ही जंगल का हुस्न है। सायों को भी कबूल करो रोशनियों के साथ। जहां खुशियां हैं वहां गम जरूर आएंगे, जहां सेहत है वहां बीमारी जरूर बसेरा करेगी, जहां मुस्कुराहटें हैं वहां आंसू तो फिर वहां आंसू भी तो आते हैं ना, और जहां जिंदगी है फिर मौत जरूर आती है। जिंदगी देने वाले रब ने कहा, ये जो औलाद देता हूं, जो तुम्हें जिंदगी देता हूं, ये कुछ अरसे के लिए, जिसकी मुद्दत नहीं पता कि कब चाहूं तुमसे ले लूं। ये इमानत है तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, और जब उसको लेने का वक्त आ जाए, जब अल्लाह कहे कि अच्छा अब ये बेटा मुझे दे दो, तो मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे 25 साल का था मेरा बेटा, ए अल्लाह ये कैसे हो गया, 25 साल का नौजवान, 6 फुट उसका कद, 6 फुट कद, घुंघरेले बाल, डिम्पल उसके गालों में पड़े, और फिर मुझे हाईवे की पुलिस आकर कहे कि एवरीथिंग इज डन ऑन द स्पॉट। ऐसे ही बैठी हुई, बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई मैं दर्स को पढ़ रही थी, मेरी रिकॉर्डिंग के लिए लेक्चर जाने वाला था, उसके लिए टाइपिंग के लिए, ग्रामर का लेसन टाइपिंग के लिए जाने वाला था, मेरी क्लास होने वाली थी, और मुझे इत्तला आई कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। जब मैंने, मुझे कॉल एक आध आई, मुझे पता चला, मैंने वुजू किया, मैंने 2 रकत नफल पढ़ी, मैंने सोचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आजमाइश आती थी वो क्या करते थे। मैंने फौरन मैंने कहा कि हवा का रुख तेज़ हो जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी जाते थे, क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। मैंने एक बेटा यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, और बेटी जो थी, उस दिन स्नो डे था, बहुत बैड डे था, जिसकी मतलब मौसम बहुत ख़राब था, मैं इस वजह से बैड डे कहा कि यानी सीज़न उसकी वजह से, मौसम की वजह से, डेथ की वजह से नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे रब के फैसले मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं उसकी पदाइश पर 2 मुल्कों में मिठाई बांटी गई, मैंने सोचना शुरू किया कि जब वो पैदा हुआ तो बहरीन में सलमानिया हॉस्पिटल में जाहिद जॉब करते थे, मैं पाकिस्तान थी तो सरगोदा में, फैसलाबाद में मिठाई बांटी गई, और बहरीन में वहाँ पर मिठाई बांटी गई। तो मैंने कहा अच्छा जब वो पैदा हुआ था तब तो बहुत खुशियाँ मनाई थी, अब आज उसको जब दुनिया से उसके रुखसत होने का टाइम है, जो अल्लाह ने इसी तरह लिखा था, अब मुझे उदास तो हूँ, गमजदा तो हूँ, पर क्या करूँगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर और क्या करूँगी, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں راضی ہوں کہ تُو نے میرے لیے جو فیصلہ کر دیا، میں خوش ہوں. اور اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اب اس امتحان میں مجھے ہائیسٹ مارکس چاہیے، مجھے تھوڑے مارکس نہیں چاہیے، میں پاسنگ مارکس پہ پاس نہیں ہونا چاہتی. آپ نے اپنے پیغمبروں کو جب ان پر آزمائش آئی تھی، جب آپ نے ان کو جو ایسے موقعوں پر انہوں نے کردار ادا کیا، اے اللہ مجھے وہ رول پلے کرنے کی توفیق دینا اور مجھے وہ ہائیسٹ جو ہے وہ درجہ دینا، ہائیسٹ مقام دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زندگی کی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ میں بغیر حساب کے اس کو دوں گا اجر، اس کی کوئی کوانٹیٹی نہیں ہے، بغیر حساب کے کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے اس کی. تو میری پیاری بہنوں، آج کا ٹاپک میں نے جو رکھا ہے، لا تحزنی، تو غم نہ کر. میری طرح آپ بھی یقیناً کوئی دکھی ہوگی، کوئی آپ بھی افسردہ ہوگی، آپ کے سینے میں بھی آگ لگتی ہوگی، آپ کے سینے میں بھی ہوک اٹھتی ہوگی، آپ بھی کسی کو یاد کرتی ہوگی، رائٹ؟ آپ بھی کوئی دعا مانگ رہی ہیں بہت دنوں سے، وہ آپ کی قبول نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے ایسے ہو. آپ بھی اپنی وجہ سے، یا اپنے شوہر کی وجہ سے، یا اپنی بیٹی کی وجہ سے، یا اپنے بیٹے کی وجہ سے، یا اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، یا اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، یا اپنے دوستوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے آپ بھی کسی وجہ سے بہت اداس ہوں. تو میں نے سوچا کہ آج اپنی باتیں کرتے ہیں، آج کسی کی باتیں نہیں کریں گے، آج اپنی باتیں کریں گے اور اللہ کی باتیں کریں گے اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے، اور پھر اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کیا کریں، میرا دکھ ہے، میرا غم ہے، میرا سینہ ہے، میری آنکھیں ہیں کہ وہ آنسو بہاتی ہیں، میں کروں کیا کہ تجھے راضی کر دوں. تو میری پیاری بہنوں، میں نے آج کا ٹاپک کیا رکھا ہے، لا تحزنی، اے عورت تو غم نہ کر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لا تحزن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور لا تحزنی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. مرد کے لیے مذکر کا صیغہ بھی ہے کہ غم نہ کر، اور اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ بھی ہے کہ غم نہ کر، دونوں طرح کا. اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لا یحزن کا، کہ تجھے افسردہ نہ کر دیں. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے، یعنی کئی جگہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور میں جب میرا بیٹا فوت ہوا تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو میں نے بہت یاد کیا. میں نے کہا کہ جب ان کے بیٹے، جب وہ پریگننٹ تھیں تو اس وقت کا حالات کیسے تھے. دشمن تھا فرعون، اس نے خواب دیکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کر دے گا، اس کا دشمن ہوگا. تو اس نے کیا ظلم کرنا شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے ہوتے تھے وہ سب کو قتل کروا دیتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، پھر آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ خوشیاں مناتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پریگننٹ ہوئیں تو ان پہ کیا گزری ہوگی، وہ لمحہ لمحہ یہ فکر کرتی تھیں کہ کیا کروں کیا کروں، میرا کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں پریگننٹ ہوں. آپ جب پریگننٹ ہوتی ہیں، جب میں پریگننٹ ہوئی تو مجھے پھل ملتا تھا، مجھے فریش جوس ملتا تھا، میں مطلب اپنے بچوں کی پیدائش پر فریش جوس. کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پینا چاہتے ہیں، کیسے رہنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چھپ چھپ کر انہوں نے اپنی پریگننسی گزاری، کہیں قوم کو پتہ نہ چل دے دوسروں کو، کیونکہ اگر ان کی پریگننسی کے دوران ہی پتہ چل جاتا تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا کہ کراس درخت پر، ان کے گھر کے باہر کراس لگا ہوتا کہ اس گھر کے بچے کا پتہ رکھنا ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے کہ لڑکا. تو انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ میں پریگننٹ ہوں. اب کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا. جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بہت ہی افسردہ تھی، بہت ہی وہ غمزدہ تھی. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی. یہ کون تھی؟ یہ ایک ماں تھی. آپ سوچیں ماں کیسی ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کوئی چیز کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کو ماں کہتے ہیں. اگر کوئی بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے نا کہیں پہ کوئی، سمجھ لیجئے کہ وہ ماں ہوگی. आंसू बहाने वाली, तड़पने वाली, और किसी को देख के बहुत खुश हो रही है तो समझ लिएगा कि माँ है जो अपने औलाद को देख कर वो खुश हो रही है। कहीं बैठ कर, आप हरम में भी है ना, आप बैठ कर दुआएं मांग रहे हैं, पास आपके कोई अवजारियां कर रही है, कोई रो रो के दुआएं कर रही है, माँ बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, दुआ कर रहा है अपनी औलाद के लिए, दुआ कर रहा है, अपना वजूद भूल जाती है माँ। और माँ तो दुनिया में जब उसकी औलाद आती है ना, आप देखें कि जैसे बाज चीजें पैदा, ये आलू, आलू से जब नया आलू पैदा होता है तो पहला आलू सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। माँ जब प्रेगनेंसी से गुजरती है, छाइयां पड़ जाती हैं, दाने निकल आते हैं, रंग बदल जाता है, अपनी कोई हालत नहीं रहती उसकी, वो बहुत गम दुख तकलीफ से गुजरती हुई और उसके जोफ पे जोफ उठाकर फिर वो अपने बच्चे को दुनिया में लेकर आती है। लेकिन जब वो पैदा होती है तो सबसे, यानी उसको अपना ऑपरेशन हो या कितने जख्म आए या कितने स्टिचेस आए, उसको ये होती है फिक्र कि मेरा बच्चा तो है ना, बच्चा ठीक है, बच्चे की आवाज आ गई, अगर उसके कान में ये बात पता चल जाए। जैसे जब मैं पैदा हुई तो मेरा पांव पैदाइशी टेढ़ा था, दायां पांव, मेरी अम्मी कहती हैं कि हेल्दी थी, लेकिन मैंने नर्स, मेरे कान में आवाज आई जैसे मैंने देखा कि नर्सें मुझसे बच्चे को छुपा रही हैं। मैं पिंडी सीएमएच हॉस्पिटल में पैदा हुई, अब्बा जान अल्हम्दुलिल्लाह फौजी थे, बहुत अच्छा सब इंतजाम था, लेकिन पांव मेरा टेढ़ा था। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब मुझे तो अपना भूल गया, मैंने कहा पता नहीं मेरे बच्चे को क्या है, मेरी बच्ची को क्या तकलीफ है कि नर्सें मुझसे जो है उसको छुपा रही हैं। कहती हैं 7 दिन की थी जब तुझे प्लस्तर लग गया पांव को, पहला प्लस्तर, ठीक। तो अब आप देखें कि माँ पे क्या गुजरती है कि अगर उसके बच्चे को, बच्चे, अभी एक बच्ची रो रही थी कि बच्चा पैदा हुआ तो वो सांस नहीं ले रहा था, तो माँ को अपनी भूल गई, उसका ऑपरेशन हुआ था, होश में आते ही पहली बात कि मेरा बेटा कैसा है। तो माँ को अपने औलाद की फिक्र होती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, चूंकि वालदा थी और उनके दिल पे जो गुजर रही थी, जो छुरियां चल रही थी, जो उनको तकलीफ थी, सोचे उनको कितनी तकलीफ होगी, उनको कितना दुख होगा। वो कोई नबिया नहीं थी, उनको, उनके पास पैगंबरी नहीं थी। अल्लाह ताला ने कहा वअहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फिर वही कर दी, क्या कर, अन अर्दई ही, कि इस बच्चे को दूध पिला। अब देखें अल्लाह ने वही कर दी, उनके दिल में ये बात डाल दी, दिल में बात डाल दी, इशारा करना, वही के लफ्जी मानी होते हैं इशारा करना, कहा कि इस बच्चे को ना दूध पिलाती रहे, अब ये ना तुम परेशान हो, क्योंकि उसको लम्हा लम्हा, जैसे किसी की नॉक बेल हो जाए, कोई मुजरिम हो कहीं पे, तो होता है कि कोई पुलिस तो नहीं आ गई, किसी को पता तो नहीं चल गया, बेल होती है तो आप घर में कोई हो तो छुपता है कि कहीं पुलिस तो नहीं है, कोई टिकट तो नहीं आ गया, कोई पकड़ने के लिए तो नहीं आ गया। अब वो डर रही है, घर वाले डरे हुए हैं, अल्लाह ताला ने वही करके कहा अन अर्दई ही, कि इसको दूध पिलाती रहे, फाइजा खिफ्ती अलैही, जब तुझे इसके बारे में खौफ महसूस हो कि फिरौन की पुलिस आकर इसको पकड़ने वाली है, फाइजा खिफ्ती अलैही, इस यही की जमीर बता रही है, हा मुअन्नस के लिए आता है और हू की जमीर जो है ये मुजक्कर के लिए आती है, और अला ने उसको ही कर दिया, हू को ही, प्रेपोजिशन जो है उसने उसको ही कर दिया, फाइजा खिफ्ती अलैही, जब तुझे इसके बारे में खौफ महसूस हो तो क्या करना, फलकी फिल यम, इसको फिर दरिया में डाल देना। मैंने याद किया उस वक्त मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पे इतना प्यार आया, सच बात है, मैंने कहा अल्लाह ताला उसने तो अपने हाथों से अपने बेटे को दरिया में डाला था, उसको तुझ पर इतना यकीन था, कैसा ईमान था उस औरत का, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं कुरान की आयतों को याद करने लगी कि किस किस पर कोई आजमाइश गुजरी तो उसका रवैया कैसा था। मैंने कहा कि मैंने तो उसको हंसते खेलते रवाना किया था, मुझे तो नहीं पता था एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप देखें कि मतलब मैंने तो खुद ब खुद अल्लाह ने ले लिया ना, मतलब मेरा उस औरत के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के साथ नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। अल्लाह ताला ने उसको कहा जब तुम्हें खौफ महसूस हो फलकीह फिल यम, उसको दरिया में डाल देना, वला तखाफी, और फिर खौफ ना करना, फिर गम ना करना, वला तहजनी, और तुझे कोई डर नहीं होना चाहिए, خوف نہیں ہونا چاہیے ولا تحزنی، اور کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں. ولا تحزنی انا، بے شک ہم، رادوہ الیک، اے ام موسیٰ میں تیرے بیٹے کو تجھ سے ملوا دینے والا ہوں، میں اس کو تیرے پاس لٹا دینے والا ہوں، میں جو کہتا جاتا ہوں وہ کرتی جانا. وجاعلوہ، اور ہم بنا دینے والے ہیں، میں اس کو بنا دینے والا ہوں، من المرسلین، رسولوں میں سے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کام بتائے، نمبر ایک دودھ پلا، نمبر دو جب تمہیں خوف محسوس ہو، ڈر ہو، نمبر تین دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا. بڑی عجیب بات ہے نا، دریا سے نکالنے کو نہیں کہا جا رہا، کشتی میں بٹھانے کو نہیں کہا جا رہا، کشتی بنانے کو نہیں کہا جا رہا، چھپانے کو نہیں کہیں کہا جا رہا، دریا کی لہروں کے طغیانیوں کے سپرد کر دینا. نمبر چار، اور پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، یہ کرتے ہوئے تمہیں یقین ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ بہت خوف زدہ رہتے ہیں نا، خوف نہ کرنا. اور نمبر چار پانچ کیا ہے، کہ پھر غم بھی نہ کرنا، کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے بیٹے پہ کیا گزرے گی، وہ ڈوب تو نہیں جائے گا، جب میں ڈالنے جاؤں گی کہیں پولیس پکڑ تو نہیں لے گی، کوئی بتا تو نہیں دے گا، کوئی مخبری تو نہیں ہو جائے گی. پانچ باتیں کہہ کر، دو باتیں اور کہیں، کہ بے شک ہم اسے، ہم یعنی مطلب جیسے دنیا کا بادشاہ یہ بات کر رہا ہے، کنگ وہ بات کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس آسمان و زمین کے سب خزانے ہیں، وہ جو چاہے کر ڈالے، میں کرنے والا ہوں. کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس کو تیری طرف لٹا دینے والا ہوں، اور پھر اس کو رسولوں میں شامل کروں گا، اس کو رسول بناؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی بات پر یقین کر لیا. میں نے سوچا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ جو مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوتا، وقتی جدائی ہے، وقتی جدائی ہے، موت کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس وقت صبر کروں گی میرا رب پھر اس کو میری طرف لوٹائے گا، وہ میرے لیے جنت کا محل کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوگا اور وہ کھولے گا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، وہ فوت ہوتا ہے، تو اس کے بعد اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ میری اس بندی نے، میرے اس بندے نے ڈیتھ پر کیا کہا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے بیت الحمد تعمیر کرو. اور یہ کس کے لیے بیت الحمد تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ چھوٹے سے بچے کے لیے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تو الحمدللہ کہتی ہوں، اور میرا بیٹا تو 25 سال، 25.5 سال کا نوجوان ہے، تو میرا محل تو بہت بڑا بنے گا، بہت کھلا ہوگا، بہت میناروں والا، ہیرے جوہرات والا، سونے چاندی والا، سجا ہوا، ڈیکوریٹڈ، کیا شان ہوگی پھر اس محل کی، کیونکہ جو چیز جتنی یعنی محنت کی ہے اس کے ساتھ، جتنی محنت کی ہے، اور جس درجے کا میں اس وقت صبر کروں گی اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گی، تو میرے لیے اتنا خوبصورت محل جگمگ جگمگ کرتا ہوا میرا بیٹا ہنستا مسکراتا آئے گا اور پھر دروازہ کھولے گا. تو اے اللہ، میں تیرے بلوڈ پروفٹ کی اس خوشخبری پر یقین رکھتی ہوں، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے تو خود ہی کہا کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، تو میں صبر کرتی ہوں کیونکہ مجھے آپ چاہیے ہیں، آپ چاہیے ہیں جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور آپ کا فیصلہ میرے لیے غلط نہیں ہو سکتا، بیسٹ فیصلہ ہے میری زندگی کا، بیسٹ فیصلہ ہے، اور میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، خوش ہوں. تو آپ دیکھیں وہ ایک عورت قرآن کی آیات، یعنی اتنا خوبصورت اس کا واقعہ کہ رہتی دنیا تک قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ نے کر دیا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہر دکھی عورت کے لیے، جس کی بیٹی کو مسئلہ ہے، جس کو خود مسئلہ ہے، اس کو شوہر کی طرف سے، دنیا کی طرف سے، جاب کی وجہ سے، جاب میں جاتی ہے کولیگس کی طرف سے، راستے میں جاتی ہے، بزنس خراب ہے، کشتی سمندر میں ڈوب گئی ہے، بزنس کا جہاز ڈوب گیا ہے، رشتہ اچھا نہیں ہوا، ہوتے ہوتے ایک عورت رو رہی تھی कि बच्ची का रिश्ता ही नहीं होता, जो आता है तो वो रुकावट बन जाता है, ख़त्म हो जाता है, फलाने ये कर दिया वो कर दिया ये वो सब, मैं और आप जो हैं एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, रोते धोते हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये जो बिलव्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये सहाबा सहाबियात की जो सुन्नत है और बिलव्ड प्रॉफिट्स की और नेक लोगों की जो सुन्नत है, ये है मेरे और आपके लिए रोल मॉडल। ला तहज़नी, कि तू गम ना कर, और यकीन कि अल्लाह का वादा सच्चा है। यकीन बहुत ज़रूरी है, बगैर यकीन के हम अमल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर क्या अल्लाह ताला कहते हैं सूरत, मैं बीच में चूँकि मैं छोटी बात को आगे लेके चलती हूँ, मज़ा आएगा कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं लाइव कुरान आपके पास पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। टीवी स्क्रीन पर पूरी आयतें नज़र आएंगी, नोट्स नज़र आएंगे, आप बैठे होंगे, बहुत दुनिया इंशाल्लाह आप जमा कीजिएगा। जब आप रेडी हो मुझे बताइएगा, फिर पढ़ेंगे, मज़ा आएगा अल्लाह के कलाम को पढ़ने का। अभी मैं और आगे चलती हूँ। सूरत अल-क़सस आयत 13 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मतलब मज़ीद बताते हैं बीच की कहानी में छोड़कर, अब उन्होंने क्या किया कि उनको पानी के अंदर माँ ने बेटे को बहा दिया। फिर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बहुत प्यार किया, मैंने उनको बहुत याद किया, मैंने कहा मैंने अपने बेटे को, क्योंकि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने हिट किया पिलर के साथ और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और फिर सब कुछ जल गया कि क्रेन से गाड़ी को उठाया गया, तो मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने तो उसको आग के सपुर्द भी नहीं किया था, यानी एक उसकी सपुर्दगी थी और मेरी तो खुद ब खुद हो गया जो होना है। एक होता है ना कि जो होना होता है वो हो जाता है, आप वो करते नहीं हैं, आप वो करते नहीं हैं, लेकिन उसने तो अल्लाह की बात पर कैसा यकीन किया। ईमान तो इसको कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से ईमान सीखना चाहिए, इसको कहते हैं। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उसने मुझ पर ईमान वो लाई, उसने मेरी जो प्लानिंग थी, मैंने जो उसको जो थे वो पॉइंट्स बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स बताए थे, उसने जब उस पर सब अमल कर लिया 4 पॉइंट, तो मैंने क्या किया, फारदद ना हो, फिर हम उसको लुटा कर लाए, इला उम्मे ही, उसकी माँ की तरफ। मैंने भी चाल चली, एक चाल मेरे दुश्मन ने चली, फिरौन ने जो उसका दुश्मन था तो मेरा दुश्मन था, एक चाल फिर हमने भी चली। और फिर क्या हुआ कि अब क्या था कि वो पानी में बहाया गया और वो लोग उसको मूसा जो था फिरौन, हज़रत आसिया ने, बीबी आसिया ने कहा, वो तैरता हुआ जो गुजर रहा था वो बच्चा, तो उसकी बीवी ने कहा, फिरौन की बीवी ने, जो बीबी आसिया थी, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, वो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उन्होंने कहा कि इसको हम बेटा ना बना ले, हो सकता है ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। औलाद जो होती है ना, आंखों की ठंडक बनना इंसान चाहता है, आंखों की ठंडक बने। और आप देखें कि क्या तदबीर थी अल्लाह की, अल्लाह इस बहाने से दोबारा उनको फिरौन के महल में ले आया। और इसमें आप बात याद रखें कि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि उस बच्चे की तरबियत आम घर में हो, अल्लाह उस माँ से उसके बेटे से बड़ा काम लेना चाहते थे। अल्लाह ताला ने कहा मैं तो चाहता हूँ ये शहजादों की तरह रहे, कई इसकी नौकरानियाँ हों, कई इसके खादिम हों और ऐश और इशरत के साथ। अब अल्लाह की मेहरबानी का एक और अक्स देखें, फरदद ना हूँ इला उम्मे ही, कि अब दूध पिलाने वाली आती थी तो किसी का दूध नहीं पीता था, किसी की छाती को मुंह नहीं लगाता था, और माँ का दिल तो धड़क रहा था ना जब बेटे को पानी की लहरों के सुपुर्द किया, तो बेटी को कहा जाकर देख तो सही कि फिर उसका क्या बना। तो तदबीर जरूरी है, गाड़ी खड़ी कर दें तो उसको लॉक जरूर करें, यानी तदबीर, कोई भी काम करते हुए दुआ करना, जो कर सकते हैं वो करना, फिर अल्लाह पर छोड़ देना, ये तवक्कुल है। ऊंट को रस्सी से बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, गाड़ी को लॉक करें, सही जगह पार्किंग करें, कि हाय टिकट क्यों लग गया, हाय मैंने तो ऐतल कुर्सी पड़ी थी, भी गलत जगह खड़ी क्यों की थी, गाड़ी को कोई ले गया, चोरी हो गई, आपने लॉक क्यों नहीं किया था, सही वाला लॉक करना था, दुआ पढ़नी थी, सही जगह खड़ी करना था, सारी तदबीरें करके फिर अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, तो ये है तवक्कुल। तो अब जो है बेटी को भेज रही है कि जाके जरा देखो तो सही। अब बेटी देख रही है कि क्या हुआ, और उसके बाद जो है फिर, यानी वो खबर रख रही थी कि अच्छा बच्चा तो महल तक पहुंच गया, अब वो खबर रख रही है कि अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ। पता चला कि बच्चा दूध नहीं पीता, माँ पे दूध ना पिए तो माँ पे क्या गुजरती है, आप हज उम्रे पे जाना चाहते हैं और बच्चा अगर आप कहीं जाती हैं तो दूध बहना शुरू हो जाता है ना, तो बच्चा दूध ना पिए, आपकी अम्मी आपके सामने खाना लगती है रखती है, बेटा आप मेरे पास आई हो वो पी लेगा, तुम तो खाओ। माँ अपनी बेटी बेटी के मुंह में डालती है और बेटी कहती है ठहरो ठहरो मामा, मैं ना जरा इसको दूध पिला लूं, वो पी नहीं रहा, वो रो रहा है। माँ कहती है बेटा ये तुम, मैंने बड़ी खुशियों से तुम्हारे लिए वो चीज बनाई है जो तुम्हें बड़ी पसंद है, आज ससुराल से आई हो, अपने घर से आई हो, बस तुम ना। माँ अपनी बेटी की फिक्र करती है, वो अपने बच्चे का फिक्र करती है, ये होती आई है। आप माँ बेटी को देखती है, आंखें सूजी हुई हैं, लगता है रात को सोई नहीं है, वो खुद जागती है, कहती है अच्छा बेटा मुझे दे दे तू जाके सो। तो यानी ये होती आई है। अब माँ जो है अब क्या है कि उसको फिक्र है कि दूध नहीं पी रहा, तो वो बताती है कि दूध जो है वो, अब बहुत से लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, जाते हैं वापस आते हैं, बच्चा दूध ही नहीं पीता। उन्हीं में से अब वो कहती है, यानी वहां पे कि मैं वो बहन जो है वो लड़के की, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, कहती है मैं तुम्हें ऐसी अन्ना ना बताऊं, मैं ऐसे तुम्हें ऐसी दाई ना बताऊं कि जो दूध पिलाए तो मुझे लगता है कि ये उसका दूध पी लेगा, और वो थी उसकी सगी माँ। अब देखें, अब उसको जो है अल्लाह ताला ने वो, फिर महल वालों ने उसको बुला के चेक किया होगा, जैसे होता है ना इसका ब्लड उससे मिल गया है, अब इसका बी पॉजिटिव है, इसका ओ नेगेटिव है, ये अब ये ब्लड इसको चढ़ जाएगा। बहुत से लोग आते हैं चेकिंग करते हैं ना, तो जब कोई बीमार हो मर रहा हो तो हर एक का ब्लड तो नहीं ना लगता, तो अब ये कि बहुत से लोगों ने ट्राई किया और सब चाहते थे कि महल में जो शहजादा बनने को जा रहा है उसको हम दूध पिलाएं तो बहुत ज़्यादा रकम भी मिलेगी, लेकिन कुदरत थी, ये अल्लाह का फैसला था, उसने किसी के मुंह को किसी की छाती को मुंह ना लगाया, यहां तक कि अल्लाह फिर उसको वापस ले आया। कहां? अल्लाह ताला कहते हैं फारजद नाहु इला उम्मे ही, मैंने उसको तदबीर की और उसकी मां की तरफ पलटा दिया। नंबर एक, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखों की ठंडक बन जाए। ये नहीं कि वो सिर्फ दूध पिलाएगी, वो उसको सीने से लगाए। जब सीने के साथ बच्चा लगता है ना तो माँ को जो सुकून मिलता है, इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास कि उसको बयान किया जा सके। कई ना तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखों की ठंडक बन जाए। नंबर दो, वला ताहजना, ताकि वो गम ना करे, उसको गम ना हो, जो वो परेशानी थी कि पता नहीं मेरे बच्चे को ज़िबा कर देंगे, मेरा बच्चा डूब जाएगा, पता नहीं मेरे बच्चे पे क्या गुजरेगी। तो माँ तड़पती है जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, जैसे मुर्गी को ज़िबा किया जाता है ना तो मुर्गी तड़पती है ना, जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो माँ तड़पती है अपने बच्चों की ज़रूरियात, उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ। एक कॉल आप कर दें और ज़्यादती करते हैं हम अपने माँ बाप को, अपनी परेशानियाँ बताते हैं, वो तड़पते रहते हैं, हम थोड़ी देर के बाद घर में हंस रहे होते हैं, हमें फिर फुर्सत ही मिलती है उनको कॉल करके बताए मामा एवरीथिंग इज़ फाइन, हम उनको भूल जाते हैं बताना खैरियत, इतने ही बताते हैं कि शोहर का मूड बहुत ख़राब है, आज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे सर में दर्द हो रही है, बच्चा बड़ा तंग करता है, और मैं प्रेग्नेंट क्यों हो गई हूँ फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी तो पहला ही छोटा है मुझसे मामा, मैं और आप रो रो के, और उसके बाद जो है आप ठीक होते हैं और माँ बाप तड़प रहे होते हैं, क्योंकि हमने फिर दोबारा कॉल करके उनको पूरी खैरियत बताने का वक्त नहीं मिलता। तो माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, अपने गम, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलात, जो कि ज़िंदगी का हुस्न है, उनको खुद हमें संभालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप को भी क्या चाहिए कि खाम खाम मुसीबतें परेशानियाँ मत पाले, अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ उनको अदा करने के बाद बच्चों को भी ना रफ़ और टफ़ बनने दें, बच्चों को भी तैयार होने दें, उम्मत मुस्लिमा का सरमाया बनने दें, उन्हें रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनि वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। तो ये जो इमामत की तैयारी है इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उनको मेहनत की आदत डालनी चाहिए शादी से पहले भी और फिर उसके बाद भी, ताकि उनको करना आए। तो बहरहाल वला तहज़ना, और वो गम ना करे। और तीसरी बात क्या थी जो बड़ी अहम बात है, وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, ताकि वो जान ले कि मैंने उससे जो वादा किया था ना वो सच्चा था। तो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके साथ जो वादे किए हैं सब सच है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात कही है कि तुमने उम्मे मूसा को नहीं देखा, कैसे मैंने उसके बेटे के लिए तदबीर की, कैसे उसको बचाया और कैसे मैं उसके सीने के साथ छाती के साथ लगा दिया, और उसका फायदा क्या हुआ कि अब उसको दूध पिलाने की तनख्वाह मिलने लगी, उल्टा दूध पिलाने की तनख्वाह भी मिलने लगी, ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा हक है। और फिर अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं वलकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, कि अगर मैं सबर करूंगी अपने बेटे की डेथ पर तो मेरा रब जो है वो मेरे लिए बैतुल हम तामीर कर रहा है, बहुत खूबसूरत होगा जैसा मेरा सबर होगा, जैसा मेरा सबर होगा। और अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। दूसरी मिसाल जो मैं अपने सामने रखती हूं और आपके लिए भी, बीबी मरियम की मिसाल है। अच्छा, अब आप देखें कि बीबी मरियम की जो मिसाल है वो कैसी मिसाल है, कि बीबी मरियम जो थी वो बगैर शादी के प्रेग्नेंट हो गई, है ना। और क्या हुआ कि अब वो जब बच्चे को लेके आती हैं तो उस वक्त जो है, कुरान में इसमें भी आयात हैं कि उस वक्त उनके ऊपर जो है वो क्या गम गुजरता है। अब उनको फिक्र इस बात की है कि अब मैं लोगों को क्या कहूँगी, मैं लोगों को क्या कहूँगी, बहुत गम में हैं, बहुत परेशानी में हैं कि अब जो है मैं क्या करूँ। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो क्या उनको कहा, बीबी मरियम से कहा अल्लाह ताहज़नी, कि तू गम ना कर, तू गम ना कर। और आप देखें कि जब उन्होंने भी गम ना किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कितना नवाजा, उनको कितना नवाजा कि बीबी मरियम जो है यानी उनका जो बेटा है अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाया। और बीबी मरियम जो थी पैगंबर थी कि नहीं थी, नहीं थी, ये भी एक आम औरत थी, नेक थी, सालेहा थी, नेक औरत थी, ये उस माँ की औलाद थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अल्लाह से दुआ की थी कि माफी बतनी लक, के अल्लाह जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसको तेरे लिए, इन्नी नजर तू लका माफी बतनी, के वो तेरे लिए है, मैं तेरी नजर करती हूँ, तेरे लिए वक्फ करती हूँ जो कुछ मेरे पेट में है। तो जब आप प्रेग्नेंट हों और आप करें दुआएं, आप करें दुआएं और अल्लाह के लिए उस चीज को वक्फ कर दें तो फिर अल्लाह उसको क्यों ना कबूल करे। अल्लाह कहता है वो तो सोच रही थी कि बेटा है और इसलिए जब बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा कि ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था, तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने तो उसको एहसान के दर्जे पे लाकर कबूल कर लिया, क्योंकि उसकी माँ ने दुआ की थी ना। और तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए बेटा अच्छा है कि बेटी अच्छी है, है ना। मैं और आप रोते रहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें क्या पता कि बेटा अच्छा है कि बेटी अच्छी है, या औलाद का ना होना अच्छा है, होना अच्छा है कि ना होना अच्छा है, कि बेटियां मिलनी अच्छी हैं या सिर्फ बेटे मिलने अच्छे हैं। असल चीज क्या है कि अब्दुल्ला और अमतुल्ला, अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां बनकर जियो, जो कुछ भी अल्लाह दे रहा है ये अल्लाह के फैसले हैं। तो बीबी मरियम की मिसाल भी मेरे और आपके लिए बहुत खूबसूरत मिसाल है। कुरान में ये भी वाक्या तफसील से लिखा है, कभी इंशाल्लाह मौका मिला हम इसको भी और तफसील से पढ़ेंगे। तो असल बात जो है वो क्या है कि काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। याद रखना इस दुनिया में मैं और आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्यों, इसलिए कि दुनिया में जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे ज़रूर होते हैं, जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ गम ज़रूर आते हैं, जहाँ पे जो है वो रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी ज़रूर आता है। तो ये पैगंबरों पर जब गुजरी तो मैं और आप जो है, मेरी और आपकी फिर क्या हैसियत है। हमें याद रखना है हम जिसके बंदे हैं तो उसके बंदे बनकर जिए। कुरान से एक और मिसाल देती हूँ, हम आज मुझे और आपको और यानी अपने प्यारों की जुदाई का गम है। बीबी मरियम को क्या फिक्र थी कि लोग कहेंगे कि जो है ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। तो कहा कि बोलना मत, रोज़ा रख लेना, चुप का रोज़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम वो जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनकी तरफ इशारा किया और वो बच्चा बोल उठा। तीन बच्चे हैं जो माँ की गोद में बोले हैं और उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम है जो माँ की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा बोलता है कि इन्नी अब्दुल्ला इन्नी रसूलुल्लाह, मैं हूँ अल्लाह का रसूल, मैं हूँ अल्लाह का बंदा। तो उस बच्चे ने अपनी माँ की बरात जाहिर की कि ये अगर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ और बाप के पैदा कर सकते हैं, ये तो सिर्फ बाप के बगैर पैदा हुआ है। वहाँ पर ऐसी आयात भी मिलती हैं जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र मिलता है। تو اللہ کی طرف سے. تیسری مثال میں اپنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر غمزدہ رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں, شوہر جو ہے وہ ناراض ہے, یا شوہر ہم سے بولتا نہیں ہے, یا بیوی ناراض ہے, بیوی بڑی نکچڑی ہے اور غصے والی ہے, اور جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتی, میری مطیع نہیں ہے. تو کہیں شوہر جو ہے وہ ناراض ہیں, کہیں جو ہے وہ بیویاں ناراض ہیں, کہیں والدین ناراض ہیں, کہیں بچے ناراض ہیں, کہیں ساس ناراض ہے, کہیں بہو, اور کبھی ہم دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ جو مختلف یہ جو تعلقات جو ہے ان کی جو دنیا ہے, اس میں ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا اور وہ ناراض ہو گیا, اس نے مجھے بلایا نہیں, میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا, اور دوسروں کو بلا لیا مجھے نہیں بلایا, میں نے تو بلایا تھا, میرے ہاں ڈیتھ ہوگی اس نے میری تعزیت نہیں کی, میرے ہاں بیمار ہو گیا اس نے میری عیادت نہیں کی. تو آلویز صبح سے لے کر شام تک یہ جو ذہن چلتا رہتا ہے, تو ہمیں شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں اپنے قریبی لوگوں سے. امی آپی کا بہت کرتی ہیں, میرا تو پوچھتی نہیں, میرے بچے کی پیدائش بھی امی میرے پاس آئی نہیں اور آپی کی دفعہ تو چلی گئی تھی. اور بھائی چھوٹا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بہنوں کے بچوں کو تو خوب آپ نے پالا, اور اب میری دفعہ کہتی ہیں میرے گھٹنے کام نہیں کرتے, میری دفعہ اب آپ کو فکر ہی نہیں آتی, آپی کی شادی پہ ایسا آپ نے تیاری کی تھی, میری دفعہ کہتی ہے میری بس جان چھوڑو نکلو جیسے بھی ہو سکتا ہے, میں مجھ سے نہیں اب ہوتا. تو میں اور آپ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں, ایک دوسرے سے شکوے کرتے ہیں, اور جیسے بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا, کبھی والدین سے نہیں کہہ سکتے, کبھی دوست سے نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کی نا آنکھوں میں, میری آنکھوں میں اگر آپ جھانکیں گے نا تو میرا غم آپ محسوس کر سکتی ہیں. آپ کسی جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا, جو محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس کو نا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے دکھ کیا ہے, مجھے تکلیف کیا ہے, میرا مسئلہ کیا ہے. آپ چند لمحے اس کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بولتی کیوں نہیں ہے, یہ سوتی کیوں نہیں ہے, یہ رت جگا کیوں کرتی ہے, مسائل کیا ہیں, پریشانیاں کیا ہیں. تو میری پیاری بہنوں, ایسے ہی ایک عورت تھی, بہت ہی دکھی تھی, شوہر اس کا بڑا اس سے ناراض, شوہر کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے, مزاج بھی سخت ہو جاتا ہے, اور ساتھ میں کوئی بیماری ہو تو سختی بھی آ جاتی ہے. تو میرے اور آپ کے گھروں میں اسی طرح بہت سے ایسے سنیریو ہیں, کیس ہیں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. تو ایسا کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی آزمائش ہے تو میں اور آپ کیا کریں. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اب تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں, اب میں تیرے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کروں گا جو کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہے انٹر کورس کا, اب میں تمہارے ساتھ قائم نہیں کروں گا. اور وہ عورت رو رہی ہے, وہ عورت پریشان ہے, وہ شکوا کر رہی ہے, وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی, بہت محبت کرتی تھی, اب رو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کیا کروں. کیونکہ اب دیکھیں ایسا مسئلہ بندہ آج اگر ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم کسی سے بتانا نہیں چاہتے. اچھا اگر کوئی دیکھے نہ, کسی کو پتہ نہ چلے, ہے نا, کسی سے پوچھتے بھی ہیں سوال تو کہتے ہیں کہ کیا کروں, شوہر میرے پاس آتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے کہ یو آر اگلی. شوہر آ کے بیوی کے پاس بیٹھتا ہے, اچھی بھلی بیوی ہے, تھوڑی دیر فیس بک پہ چڑھی ہے, اور فیس بک پہ یعنی چڑھی سے مراد لیڈر پہ نہیں مطلب سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پر ادھر ادھر مووی ڈرامہ اس پہ دیکھا ہے کہ شوہر بیوی سے کیسے محبت کرتا ہے, پھول لا کے دیتا ہے, باہر لے کے جاتا ہے, گھومنا ہے, دعوتیں ہیں, ڈارلنگ اور ہنی اور سویٹی, اور پھر اس کے بعد گفٹ ہیں, اور پھر وہ کیا ہے آج اینیورسری ڈے ہے وغیرہ وغیرہ. اور شوہر جو ہے نہ تو سویٹی کہتا ہے, نہ ڈارلنگ کہتا ہے, نہ گھومنے کے لیے پہلے ہنی مون پہ بھی نہیں گئے تھے, تحفہ بھی لا کے نہیں دیا تھا, مہر بھی نہ دیا, اور وہی 32 روپے, اور وہ تھوڑا بہت جو دیا وہ بھی واپس لے لیا. اچھا کہا کہ دیں گے, کہا کہ اچھا میرے ابھی حالات اجازت نہیں دیتے, پھر میں تمہیں کبھی گھمانے لے کے جاؤں گا, میرے بالوں میں چاندی چمکنے لگی. آج تک میرا شوہر مجھے کہیں بھی گھمانے نہ لے کر گیا. اور وہ یعنی دوستوں سے ملی ہوں, ان کے گھر کو دیکھا ہے, ان کا صوفہ اور ان کی صوفے ان کے قالین پر قدم رکھا تو پاؤں نیچے چلتے چلے گئے. ان کی گاڑی پہ بیٹھی, بٹن دبایا اس نے, और शीशे खुल गए, बटन दबाया तो गेट खुल गया। अरे डिग्गी भी बैठे बैठे ही, मैंने तो ऐसे ही हाथ मारा कि उसका दरवाजा बंद कर दूं, तो कहा टच नहीं करना, ये खुद ब खुद ही बंद होते हैं और खुद ब खुद ही खुलते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह देखो ये भी एक दुनिया है, क्या बात है, क्या खुशकिस्मत है ये मेरी बहन मेरी दोस्त। और देखो मैं वही जो है वो क्या कहना चाहिए, कचरा गाड़ी, या वही बंद करो तो बंद नहीं होती, चलती है तो आवाज़ निकलती है, चलती है तो धुआं निकलता है, और मसाइल मुश्किलात देखो क्या हंसी है, कभी ये मेकअप के लिए जाती है, कभी और अपनी फेस के लिए जाती है, और कभी ये एक्सरसाइज के लिए चली जाती है। इसका देखें कैसे इसने अपने आप को टाइम दिया है। मैं एक के बाद दूसरे के लिए प्रेग्नेंट हो गई, तीसरे के लिए खाना पकाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, है ना। तो आंसुओं से रोते हैं, परेशान होते हैं। तो हम में से हर एक के गम हैं, किसी का छोटा किसी का बड़ा, उसकी समझ के मुताबिक, जो उसकी समझ है। तो अब वो जो खातून हैं, अभी आप में से मैं पूछूंगी किसको उनका नाम आता है, मुझे लगता है आपको आता होगा वरना मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अब वो ना सोच रही है कि क्या करूं, और फिर जो है ना वो बिलविड प्रॉफिट के पास जाती है, कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जो शौहर हैं उन्होंने ना मुझे ये कह दिया है, तू मेरे लिए ऐसी है जैसे कि मेरी माँ, और मेरे साथ वो ताल्लुक कायम नहीं करना चाहते और मेरी तो जिंदगी तबाह बर्बाद होगी, अब हम क्या होगा, क्या करेंगे, अब क्या होगा, मेरा तो घर उजड़ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, यानी ये आयतें क्यों नाजिल हुई, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनको अभी कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब ना दिया, उन्होंने कहा कि यानी इसका कोई मेरे पास हल नहीं है, मैं तुम्हें इसका क्या हल बताऊं। अभी यानी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ने इसको रवायत करती हैं कि अभी वो औरत वहीं पर थी, और जब वो रसूलल्लाह से बात कर रही थी, कहती है मुझे भी नहीं पता चला कि वो औरत क्यों आई है, उसने बिलविड प्रॉफिट को आकर अपनी क्या गम बताया है, क्या मुसीबत बताई है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई। और अभी उस औरत ने उस घर से कदम निकाले नहीं थे कि आयतें नाजिल हो गई, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुक, अल्लाह ने तहकीक सुन ली, इतना भी काफी हो सकता था, समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, कद समी अल्लाहु, यकीनन अल्लाह ने सुन ली है, यकीनन डेफिनेटली अल्लाह ने सुन ली, कौल अल्लाती उस औरत की बात, अल्लाती है, अल्लाह जी नहीं है यहां पे, अल्लाती उस औरत, औरत कमजोर नहीं है, औरत को बहुत अल्लाह ने हकूक दिए हैं, उस औरत की वजह से रहती दुनिया के लिए ना आयतें नाजिल हो गई, उसका गम उसका दुख सातों आसमानों को चीरता हुआ उसने अर्श को हिला दिया। तो जब अल्लाह से मांगे अल्लाह देता है, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने उसकी बात सुन ली, तुजा दे लू का जदल, जदल कहते हैं झगड़ा करना, जैसे फाइट करना, क्योंकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो जैसे होता है ना बाज़ों का, कहते हैं नहीं नहीं आप सब्र करो, नहीं नहीं अब इस मसले का कोई हल नहीं है, अब और क्या हो सकता है। तो वो बार बार ना बहस कर रही थी, बार बार जो है आर्गू कर रही थी कि मैं तबाह हो गई, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे शोहर का क्या होगा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और गुस्से में आके उन्होंने ऐसा कह दिया, अब मैं क्या करूँ। अभी तक इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी पता नहीं था कि क्या किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुजादिलू का फी ज़ौजिहा, वो अपने शोहर के बारे में झगड़ा कर रही थी कि अब मेरा क्या बनेगा, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, हम जिंदगी गुजारने चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कह रहे थे कि अब तुम अलहदा ही तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने कह दिया तो तुम गोया कि उसकी माँ की तरह ही हो, अब वो ताल्लुक कायम नहीं हो सकता, कुछ इस तरह की बात। अल्लाह ताला कहते हैं वह तश्तकी इल्लाह, वह तश्तकी इल्लाह, वो अल्लाह से शिकवा कर रही थी, वो लोगों से शिकवा नहीं कर रही थी। इससे क्या बात पता चलती है, गम हो दुख हो परेशानी हो मुसीबत हो तो किससे शिकवा करना है, वो नीली छत वाले से करना है, अल्लाह से शिकवा करना है, वो मेरी और आपकी मुसीबतों को दूर करने वाला है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब गम के पहाड़ टूटे थे तो उन्होंने किससे शिकवा किया था, उन्होंने अल्लाह से शिकवा किया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे तो उन्होंने किससे शिकवा किया था, अल्लाह से शिकवा किया था। याकूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह, मैं अपनी मुसीबत परेशानी और गम का शिकवा अल्लाह से करता हूँ। सूरत यूसुफ आयत 86। अब यहाँ पे वो भी क्या करते हैं कि वो अल्लाह से शिकवा कर रही थी। तो हमें क्या साथ साथ हमें पता चल रहा है हमें मुसीबतें परेशानियों में क्या करना चाहिए, हमारा अंदाज क्या हो तो अल्लाह से शिकवा करना चाहिए। और अल्लाह भी कैसा है, वल्लाहु यस्माउ, और अल्लाह सुनता है और अल्लाह सुनेगा। अल्लाह को महसूस करें, अल्लाह से दोस्ती करें, अल्लाह से ताल्लुक बनाएं, दिल का ताल्लुक। कुरान को खोलें, उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, मेरे एक एक दुख मेरे एक एक गम उसका इलाज, उसकी मेडिसिन, उसकी दवाई, उसकी ट्रीटमेंट उसके अंदर मौजूद है। मेरे डिप्रेशन आपके डिप्रेशन, मेरे गम आपके गम। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यस्माउ तहावरुकुमा, तहावुराकुमा, अल्लाह तुम दोनों की जो झगड़ा था ना, तुम लोगों की जो बात थी उसको सुन रहा था, और वो क्यों ना सुनता, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनता है और खूब जानता है। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि औलाद नहीं है, कुछ कहते हैं कि सिर्फ बेटियां हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ बेटे हैं, तो उसके लिए रोते हैं। उसके लिए सूरत अश्शूरा आयत 49 और 50 को पढ़ें। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मेरा प्लान क्या है दुनिया के बारे में, कहा कि किसी को मैं सिर्फ बेटे देता हूँ, किसी को मैं सिर्फ बेटियां देता हूँ, किसी को मैं बेटियां और बेटे मिला के देता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं देता, ये मेरी मर्जी है। तो करना क्या है, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना है। और ये औलाद का बताने से पहले अल्लाह ताला कहते हैं आसमानों जमीन में जो कुछ है लिल्लाही, वो अल्लाह के लिए है, अल्लाह की मर्जी है, हुकूमत अल्लाह की है, मलकियत अल्लाह की है। फिर इसी तरह हम में से कुछ लोग के गरीब हैं, जॉब नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, बच्चा इम्तहान दे रहा पास नहीं हो रहा, करेबियन में गया डॉक्टर बना, अब यूएसएमएली के इम्तहान ही पास नहीं हो रहे, या ये कि रोड टेस्ट पास नहीं हो रहा, 60 टेस्ट दिए अभी मैं रोड टेस्ट पास नहीं कर सकी, इमिग्रेशन नहीं मिल रही, वकील को केस किया हुआ है, कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, हम सच्चे हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा, औलाद, यानी किसी भी लिहाज से जिंदगी के जो मसाइल हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं भूख गर्मी सर्दी मुश्किलात कारोबार और मुख्तलिफ आजमाइशों से तुम्हें आजमा, वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन, मुख्तलिफ चीजों से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ये सूरत अल बकरा आयत 155 है कि अल्लाह ताला जो है वो सबको आजमाता है। और मेरी प्यारी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम का बेटा इस हालत में पैदा किया गया है कि इसके पास 99 मुसीबतें हैं, 99 इसकी साइड पर इसके पहलू में मुसीबतें हैं। ये तिर्मिजी की रवायत है। मुसीबत पता है किसे कहते हैं, ये लफ्ज सौब से निकला है, स्वाद व बा, इसका मतलब है कि तीर एग्जैक्ट निशाने पे लगे, तीर एग्जैक्ट निशाने पे लगे। तो जिस पर भी कोई गम मुसीबत तकलीफ परेशानी आती है, अल्लाह ने उसको ऐसे बनाया होता है, उसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है, एग्जैक्ट ठक करके उसको जाके लगती है। मैं कहती हूँ कि टेस्ट हुआ और भी लोगों का हुआ तो मैं ही क्यों फेल हो गई, टेस्ट हुआ और मुझे ही अचानक ये बीमारी क्यों डायग्नोज हो गई, लोग सबके बच्चे गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं, मेरे ही बेटे का क्यों रोड एक्सीडेंट हो गया। तो याद रखें, जिस दिन से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ ना, उस वक्त भी मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला जिनके बच्चे जिनके घर वाले सड़कों पे निकलते हैं ना, मैं उनकी तुझसे खैर तलब करती हूँ, जो मुझ पे गुजरी है ना वो किसी पे ना गुजरी। तो क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए और हसद नहीं करना चाहिए कि जो मुझ पे गुजरी है वो दूसरों पे क्यों नहीं गुजर गई। क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए दुआए खैर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं फिर उसको इम्तहान में डाल देते हैं, और सबसे ज्यादा इम्तहान पैगम्बरों का लिया गया और फिर नेक लोगों का लिया गया। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जिसका ईमान जिस दर्जे का होता है ना, उसके मुताबिक उसे आजमाता हूँ, और फिर वो हालांकि वो दुनिया में इस हाल में होता है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, क्योंकि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह जो है वो माफ होते हैं। और फिर जो है यानी और भी बहुत सी मिसालें मैंने सोची थी, लेकिन मैं अपनी बात को समेटती हूँ कि जिंदगी में दुनिया में जो मुझे और आपको जो गम मिले हैं, जो परेशानियां हैं या जो डिप्रेशन है, जो मसाइल हैं, तो फिर इसमें मैं और आप जो है वो क्या करें, इस पर मैं बात को मुकम्मल करना चाहती हूँ। और इसमें अमल के करने के लिए जो उसूल हैं वो ये हैं कि अमन तो बिल्लाही, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाऊं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू, के लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर इस डट जाते हैं, इस्तकामत दिखाते हैं, तो अल्लाह फिर उनके लिए जो है क्या फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, उनको ब्लेसिंग मिलती है, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करता है। तो क्या ये सस्ता सौदा है? ये बहुत महंगा सौदा है कि जो मुश्किल परेशानी आ रही है, अगर मेरा बिहेवियर अच्छा हो तो अल्लाह मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। दूसरी बात जो मुझे और आपको पता चलती है, फ़ासा अंतक रहू शैया व यज अल्लाह फ़ीही खैरन कसीरा, सूरत निसा आयत 19। एक चीज़ जिसको तुम नापसंद करते हो और हो सकता है अल्लाह ने उसमें मेरे लिए को खैर रख दियो, तो मैंने ये सोचा कि बेटा मुझे बहुत पसंद था लेकिन इसमें मेरे लिए खैर है उसकी डेथ में, क्योंकि हो सकता है कि उसका दुनिया में और रहना मेरे लिए बेहतर नहीं था, उसके लिए बेहतर नहीं था, तो अल्लाह ताला ने इसमें कोई यकीनन खैर रखी होगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का डिज़ाइनर है, क्रिएटर है, रूलर है, वो उसके फैसले जो है ना वो गलत नहीं हो सकते, वो कमज़ोर नहीं हो सकते, वो ख़राब नहीं हो सकते। इसी तरह सूरत अल-बकरा आयत 216 में है कि शायद कि तुम किसी चीज़ से नफरत करते हो, वहुआ खैरुल्लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, और हो सकता है अंतुहिब्बु शैया, तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, वहुआ शरुल्लकुम, बहुत कोशिश की शादी चले ना चल सकी, लेकिन शायद तलाक में ही बेहतरी थी, है ना, क्योंकि बहुत कोशिश की, बहुत चाह रहे थे, जो बिज़नेस शुरू किया था वो चले, वो ना चल सका, शायद उसके ख़त्म होने में बेहतरी थी। वल्लाहु यालमु वअन्तुम ला तअलमून, और अल्लाह ज़्यादा जानता है और तुम नहीं जानते। तो ये हैं मेरे और आपके लिए अमल के उसूल, रोना, चीखना, चलाना, मातम करना, शिकवा करना, उसने गलत रिश्ता बताया था, अच्छा रिश्ता हो जाए फिर बहुत ठीक, ख़राब रिश्ता हो जाए जो मदद करने वाले हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं, है ना, दूसरों को कंप्लेन करते रहते हैं। तो अमल का उसूल मेरे और आपके लिए क्या बनता है, याद रखें कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं जब मुसीबतें आती हैं, यानी हमें ऑप्टिमिस्ट बनना है या पैसा मिस्ट बनना है, ये सोचना है। मैंने अपने बेटे की डेथ पे दर्स दिया कि अहमद की डेथ के फवायद क्या हैं, मैंने ये दर्स दिया, है ना, क्यों, क्यों फ़ायदे सोचना चाहिए। नंबर एक, दिल नरम होता है, नंबर दो, इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है, नंबर तीन क्या होता है कि जब दिल टूटता है तो अल्लाह को आप हर वक्त याद करते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह मिलेगी, अल्लाह की माइयत का एहसास होता है। तो आखिरी बात इस पे मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुस्न अमल की तौफीक अता करे, अपने फ़ैसलों पर राज़ी कर दे, और जो भी मसाइल मुश्किलात हैं उसमें मैं और आप जो हैं वो सब्र और शुक्र की रविश पर चलें, और जो भी मेरे और आपके मसाइल हैं ना उनको उनमें से, यानी इसका ये नहीं मतलब कि बस वहीं बैठ जाएं, अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसको क्या करना चाहिए, यही नहीं कि बस यही अल्लाह की मर्ज़ी है मैं डूब रही हूँ, मतलब मैं पानी में गिर गई हूँ, क्या करना है कि उससे निकलने की कोशिश करनी है, यानी मेरे और आपके जो भी हालात हैं अमल का असूल ये निकलता है कि उन हालात को चेंज करने की फ़िक्र करें, उससे निकलने की फ़िक्र करें, जितनी तदबीर कर सकते हैं उतनी तदबीर करें, और उसके बाद रिज़ल्ट अल्लाह पर छोड़ें और दुआएं करें, ये मेरा और आपका काम बनता है। गम है, परेशानी है, मुसीबत है, रिश्ता हो नहीं रहा, हो गया तो मसाइल हैं, या जो भी और भी मेरे और आपके, तो क्या करना है, कोशिश करनी है अपने हालात को, और इस बात पर यकीन रखना है इन्ना माल उसरी युस्वा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और हर रात के बाद खूबसूरत सूरज जो है वो तुलू होता है, ब्यूटीफुल सन शाइन करता है, और वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को भी रोशनियों में तब्दील कर देगा। अल्लाह ताला यही कहते हैं सूरत वद्दुहा में कि अद्दुहा क्या है कि रात के बाद सूरज चमकता हुआ आता है। तो इंशाल्लाह मेरे और आपके हालात भी बदलेंगे, तो दुआ कर लेते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا الله، يا حي يا قيوم يا الله، يا رحيم يا كريم يا الله. اے ستر ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے آقا، اے رحیم اور کریم، خالق اور مالک، اے میرے رب، میرا دکھ، میری مصیبت، میری پریشانی دنیا تو نہیں جانتی پر آپ تو جانتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں وہ تکلیفیں نہ دے، ہم پہ وہ آزمائشیں نہ ڈال جنہیں ہم برداشت نہ کر سکیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہم اپنے غموں پریشانیوں کا شکوہ آپ سے کرتے ہیں. اے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچانے والے رب، ہمارے یوسفوں کی بھی خیر کر. ہماری بیٹیاں جو مریم ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر. ہماری اولاد جو ہے، اے ہمارے رب، یہ غم ہے، یہ ڈر ہے، یہ فکر ہے، یہ پریشانی ہے کہ مغرب کی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے، خاک دنیا کی مشرق میں رہتے ہیں یا مغرب میں، جو آزمائشیں ہیں، جو شیطان ساتھ لگا ہوا ہے اور جو ہم آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان جو ہے وہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے گھر میں کافر پیدا ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر آ جائے. اے ہمارے رب، ہمارا دکھ، ہماری پریشانی کہ دنیا سے جائیں تو اس حال میں، دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے، وہ زیادتیاں جو ہم نے چھپ چھپ کر کیں. اے ہمارے غم، ہمارا یہ غم ہے کہ زندگی کو ضائع کر دیا. غم ہے تو اس بات کا کہ بچوں کی اچھی تربیت نہ کر سکے. غم ہے تو اس بات کا کہ قرآن کو صحیح سے سمجھ نہ سکے. غم ہے تو اس بات کا کہ تو نے قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا اور رکھ دیا کہ شیطان خون کی طرح ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے اور ہم شیطان کی چال میں آ جاتے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. غم ہے تو اس بات کا کہ بہت جلدی جو ہے وہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہماری زبان جو ہے اس سے غلط باتیں نکلنے لگتی ہیں، شکوہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. غم ہے تو اس بات کا کہ جن سے نفرت کرتے ہیں پھر انہی کے نام اعمال میں اپنی ساری نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، کیونکہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں ان سے لے کر جن کی وہ غیبت کرتے ہیں ان کے نام اعمال میں دے دی جاتی ہیں. غم ہے تو اس بات کا جہاں سچ بولنا تھا وہاں سچ کیوں نہ بولا. غم ہے تو اس بات کا کہ جب جھوٹ بولا تھا تو زبان گنگ کیوں نہ ہو گئی. غم ہے تو اس بات کا کہ گناہوں کی طرف قدم کیوں چلے گئے، لیکن بجائے اس کے کہ غم جو نبیوں کو ہوا اور غم جو صحابہ صحابیات کو ہوا، ان کو دنیا کے بجائے آخرت کی فکر تھی. ان کو جب بھی آزمائے گئے تو ان کو یہ فکر تھی کہ ہمارا رب تو ہم سے ناراض نہیں ہو گیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس بات پر غمزدہ ہیں کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے. ہم اس بات پہ غمزدہ نہیں ہیں کہ جب بھی گھر ہو تو حلال کمائی سے ہو. ہمیں غم ہے تو اس بات پہ ہے کہ دوسرے کے گھر سے اچھا میرا گھر کیوں نہیں ہے. اور بی بی آسیہ کو غم تھا تو اس بات پہ تھا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ ہمارے رب کہ جنت میں ہمارے میرے لیے محل بنا دے. اس کا فرعون کے محل میں دل نہ لگا کیونکہ فرعون ظالم تھا, فرعون اکفر الکافرین میں سے تھا. تو اے اللہ تو ہم سب کو جو بھی ہمارے دنیا کے غم ہیں, چھوٹے بڑے جو بھی غم ہیں, تو ان غموں کا مداوع کر دے, ہمیں ان غموں پریشانیوں سے نکال دے, ہماری مصیبتوں کو ہم سے ہٹا دے, ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے, اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز, جن کے پاس اولاد ہے ان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنا, جو پیارے دنیا سے چلے گئے کہ اب ماں کی طرح دعائیں کرنے والا کوئی نہیں, اب باپ کی طرح سہارا کوئی نہیں, اب اپنے پیارے جو مشکل میں کام آتے تھے کندھا دینے والا کوئی نہیں کہ میں اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کر چند آنسو بہا لوں. تو اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا, تو ہمارا اصل سہارا ہے. اے اللہ تیری مائیت کا احساس ہو, یہ فکر ہو, یہ غم ہو کہ تجھے راضی کر لے. اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے, ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے اور جو زندہ ہیں ان سب کی مغفرت کر دے, یہاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں سب کی مغفرت کر دے, اور ہماری پیاری بہن نے جو آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے, بیوٹیفل محفل, اور فرشتوں کی محفل اور قرآن کی محفل اور اللہ کی محفل اور اللہ کے رسول کی محفل اور دلوں کو نرم کرنے والی محفل اور تیری شکر گزاری کی محفل ہے, اللہ تیری شکر گزاری کی محفل. وہ میری بہن جس نے سجائی, وہ میری بہن جس نے فلائر بانٹے, جس نے کالے کی, وہ بہنیں جنہوں نے رائڈ دی, دور دور سے آئیں اور نزدیک سے آئیں, وہ ہمارے بھائی جنہوں نے اجازتیں دی, ان کے شوہر, وہ ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, جو بھی یہاں پہ موجود ہے, جو سننے کے لیے آئے, جو سنانے کے لیے آئے, جو پڑھنے کے لیے آئے, جو پڑھانے کے لیے آئے, جنہوں نے کتابوں کے باکسز اٹھائے, ہر ایک کا ایک ایک عمل اے اللہ تو ان کو قبول کر لینا, تو ان سے اتنا پیار کرنا کہ یہ تصور نہ کر سکیں, اور ان کے بدلے ان کو جنت الفردوس دینا, اور ان کے بدلے ان کو ان سے راضی ہو جانا, ان کے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دینا, اور اے ہمارے رب مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا, اور اے ہمارے رب انعمت علیہم میں شامل کر لینا, کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اتنی خوبصورت محفل سجانے پہ میں اپنی ان کیلیفورنیا کی بیوٹیفل فیسز کو, ان مسکراتے چہروں کو, ان چمکتی پیشانیوں کو اور کیا کہوں. اے اللہ تو ان سے راضی ہو جانا, ان کو نفس مطمئنہ میں شامل کر لینا. آسٹریلیا کی بہنیں, کینیڈا کی بہنیں, امریکہ کی, پاکستان, انڈیا کی, برطانیہ کی, جرمنی کی, کل دنیا کے مومن مومنات, مسلم مسلمات, سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لینا اور ہم سب سے راضی ہو جانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.